যদি কহ কে কট শাখা বালে বিদ্বানোঁ নে জড় প্রকৃতি কো জগত কা কারণ অনুমান কিয়া হ্যায় পরন্তু যে কহনা ঠিক নহি হ্যায় ক্যোঁকি বাহা রথ কে রূপক সে প্রদর্শিত শরীর কা হি গ্রহণ কিয়া গিয়া হ্যায় ইস সম্বন্ধ মে যে সুরতি হ্যায় বুদ্ধি তু সারথি বিধি মনা পরগ্রহ মেল চাই আত্মা রথি রথ পর সবার শরীর রথ বুদ্ধি সারথি মন রসি ইন্দ্রিয়াং কোলো কে স্বরূপ বালো ইন্দ্রিয়াং কোলো কে স্বরূপ বালি ওর শব্দ আদি বিষয় মার্গ স্বরূপ হন্দ্রিয় ও মন সে যুক্ত আত্মা ভোগনে বলা হিস প্রকার শরীর কো রথ কাহা গিয়া হুসি কাজ নাম অব্যক্ত হকারণবশ অবশিষ্ট শরীর কো অব্যক্ত বিশেষ প্রকার সে কে দিয়া হিসে সংখ্যা পদার্থো কা সংগ্রহ নই মানা যা সকতা সো অদেবনা পরম পদ কে অনুসার ইস রাখ আদি কো বশ মে রাখকর বিষ্ণু পদ প্রাপ্তি কে ধ্যান ধ্যান উপাসনা আদি করনে বালা মনুষ্য সংসার সাগর সে পার হো জাতা হ্যা ইসে সিদ্ধ হুয়া কে যহাঁ অব্যক্ত শব্দ কা প্রয়োগ শরীর কে লিয়ে করনে পর ভি উসকা সূক্ষ্ম সে হি বোধ হোতা হ্যা ইসে অগলে সূত্র মে স্পষ্ট করতে হ্যাঁ জীব আত্মা কে পরম ধাম জানে কে সময় ব্যক্ত প্রগট দে তো ইহি রহ জাতা হ্যাঁ অব্যক্ত সূক্ষ্ম শরীর হি বহন জাতা হিসলিয়ে সূক্ষ্ম শরীর কা অব্যক্তত্ব মাননা উচিত হ্যায় পরলে কাল মে ইস দিখাই পড়নে বালে সম্পূর্ণ বিশ্বকে সূক্ষ্ম ভাব গ্রহণ করনে কি বাত শ্রুতিয়ো নে কহি হ্যায় ইসে শরীর কা সূক্ষ্ম ভাব সে অব্যক্ত প্রগট না হোনা সিদ্ধ হ্যায় সাংখ মত বালোঁ কে অনুসার প্রকৃতি স্বতন্ত্র ও জগত কা কারণ কহি গই হন্তু শ্রুতিয়া এসা নহি কহতি বে তো ব্রহ্ম কো হি সম্পূর্ণ জগত কা কারণ মানতি হর প্রকৃতি কো ব্রহ্ম কে হি অধীন মানা গিয়া হ্রহ্ম কে অধীন রহ কর সৃষ্টি আদি কার্যো কো করনে মে হি উসকি সার্থকতা হ্যায় শ্বেতা শ্বের কে অনুসার মহারিষিয়ো নে ধ্যান কে অবস্থিত হোকর পরমেশ্বর কো সুগুণ আত্মকা শক্তি কা সাক্ষাৎকার কিয়া যহাঁ পরমেশ্বর কি শক্তি কে নাম সে হি প্রকৃতি কা বর্ণন কিয়া গিয়া হ্যায় ইস প্রকার প্রকৃতি কো স্বতন্ত্র সত্তা কে রূপ মে নহি মানা যা সকতা সাংখ মত বালে প্রকৃতি কো जानने योग कहते हैं। गुण संयोगता प्रकृति और पुरख की भिन्नता जान लेने से मोक्ष प्राप्ति होती है। इसके अनुसार प्रकृति और पुरख की भिन्नता जानने के लिए पहले प्रकृति को जानना होगा, परंतु श्रुति उसे जानने या उपासना करने योग नहीं कहती। श्वेताश्वर श्रुति ने प्रकृति को माया और उसके अधिपति परमेश्वर को माई कहा है। वह माई पुरुष अपनी माया के द्वारा ही विश्व की सृष्टि करता है। इससे सिद्ध हुआ कि सांख मत में कहे हुए प्रधान शब्द को गे कहना ठीक नहीं, केवल ब्रह्म ही गे है। अव्यय की चर्चा में कठोपनिषद में कहा है कि शब्द से परे स्वर्ग, स्पर्श रूप रस गंध से भी परे नित, जिसका आदि अंत नहीं, महत से भी परे और अटल तत्व को जानने से जीव अमर हो जाता है। इस प्रकार ब्रह्म का ही ज्ञेयत्व सिद्ध होता है, क्योंकि प्राग शब्द इस प्रकरण में ब्रह्मवाची ही है और पुरुषान परम किंचित सा काष्ठा सा परागति, पुरुष से श्रेष्ठ कोई नहीं, वे ही परम गति है। यह सभी भूतों में गुप्त भाव से रह कर अपना स्वरूप प्रकाश नहीं करता। इस में पराग ही पुरुष है और प्राग शब्द ब्रह्म के लिए ही कहा गया है। मृत्यु और नचिकेता के संवाद में अग्नि जीवात्मा और परमात्मा इन तीन के संबंध में प्रश्नोत्तर है। परमात्मा से संबंधित प्रश्न में आशावद आशावद आशब्दम स्पर्शम का लेख कर उसे शब्द से परे और स्पर्श से परे कहा है। उसमें कहीं भी प्रधान या प्रकृति के स्वंदगत पुरुषोत्तर नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि उसमें उक्त तीनों के अतिरिक्त किसी का भी वर्णन नहीं है। सांख्य शास्त्र के अनुसार महत शब्द को महतत्व का वाचक माना गया है, परंतु कठोपनिषद के अनुसार महत शब्द महतत्व का वाचक नहीं है। जैसे महंतम विभु आत्मानम, जहां महत शब्द आत्मा के अर्थ में प्रयुक्त हुआ। बुद्धिरात्मा महान परा, बुद्धि से महान आत्मा परे है। यहां आत्मा को बुद्धि से परे कहा है, परंतु सांख्यवादी महत्त्व को बुद्धिवाची ही मानते हैं। इस प्रकार अव्यक्त शब्द का अर्थ सांख मत वालों से भिन्न मानना ही उचित है। श्वेताश्वर में आजाद शब्द को प्रकृतिवाची मानना है, परंतु वह सांख मत वाली प्रकृति है। इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। जहां अजा शब्द स्वरूप होता, बहु पुरुष सृष्टि कारण शब्द का अजा नाम से जिस प्रकृति का वर्णन किया है, वह परमेश्वर को परमेश्वर अधीनस्या अचिंतस्या शक्ति है, जिस में नीचे गड़ा और ऊपर हथी हो और ऊपर हथी हो, वह चमस चमचा सोमपान के निमित्त पात्र विशेष का वाचक होने पर भी सिर के अर्थ में लिखा गया है। वैसे ही अजा शब्द से सांख मत में कही गई प्रकृति का ग्रहण नहीं होता। वेदों में वर्णन की गई अजा की ब्रह्म से ही प्रकट हुई है, स्वतंत्र रूप से उसे नहीं कहा गया। ज्योति शब्द से भी यही ठीक है, क्योंकि उसका प्रकाश ब्रह्म ही है। ज्योति शब्द से उपक्रम आरंभ होने से अजा शब्द को ब्रह्म शक्ति कहना उचित है। अर्थात ये प्रभु तुम्हारे ध्यान योग में लगा हुआ व्यक्ति तुम्हारी अप्रगट शक्ति को देखता है, इस प्रकार प्रकृति को ईश्वर की शक्ति ही बताया है। त्रिगुणात्मक ब्रह्म मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, इसे स्पष्ट ही प्रकृति का ब्रह्माश्रित होना सिद्ध होता है। सूरज में मधु की कल्पना, वाणी में तेनु की कल्पना और अग्नि रूप में दिदुलोक आदि की कल्पना के समान ही अजा नाम से शक्ति होता प्रकृति का रूपक वर्णन करने में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि अजा का अर्थ अजन्मा ही भी है। प्रकृति का कारण ब्रह्म होने से उसे अजन्मा कहा जाए तो भी अनुचित नहीं है। इससे सिद्ध हुआ कि अजा नाम से प्रकृति का वर्णन हुआ है, वह ब्रह्म ही की ही आश्रिता है, उसका स्वतंत्र होना सिद्ध नहीं होता। जिसमें पांच जन और आकाश भी प्रतिष्ठित हैं, उस आत्मा को मैं विद्वान अमृत स्वरूप ब्रह्म मानता हूँ। सांख मत वाले पांच जन का अर्थ पांच का पांच के साथ गुणा करके 25 और जन से तत्व का ग्रहण करते हैं, परंतु पांच जर पांच से 25 माने तो भी आकाश और आत्मा सहित 27 तत्व हो जाते हैं। सांख के 25 तत्वों में मूल प्रकृति मह तत्व हंकार 11 इंद्रियां पंच भूत और पुरुष कहे गए हैं, परंतु पांच संख्या के विशेषण से जहां पांच जन जहां कहे हैं वे संख्या में कहे गए आकाश आदि भूत जिस ब्रह्म में प्रतिष्ठित हैं वही आत्मा और ब्रह्म है, तो ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं हुआ। बृहदारण्यक उपनिषद के पीछे कहे गए मंत्र के पश्चात में कहा है कि जो उस प्राण के प्राण चक्षु से चक्षु श्रोत्र श्रोत्र के श्रोत्र तथा मन के मन को जानते हैं वे विद्वान उस आदि प्राण पुरुष में वर्णन है, परंतु उसमें मन से पहले अन्न अर्थात पार्थिव इंद्रियों का भी उल्लेख है। इस सब से तात्पर्य यह है कि प्राणादि से यहाँ ब्रह्म की शक्ति का ही वर्णन किया गया है। काव्य शाखा वालों ने उनसे अन्न अर्थात पार्थिव इंद्रियों का आलेख नहीं किया। ये बात ऊपर के सूत्र से कही जा चुकी है। यदि उसमें अन्न शब्द ना भी रहे तो भी ज्योति शब्द से पांच की संख्या पूरी हो जाती है। वे सभी देवता ज्योति पदार्थ के प्रकाशक ब्रह्म की उपासना करते हैं। इस प्रकार ज्योति शब्द के प्रकाशक के रूप में जहां ब्रह्म का कथन है और ज्योतिषां ज्योति से इंद्रियों का ग्रहण होता है, कार्य रूप जगत की रचना का वर्णन भिन्न भिन्न प्रकार से करने पर भी कर्ता सभी के ब्रह्म को ही बताया है। वहां सृष्टि के आदि ये आकाश का होना कहा है। तेज गुण वाली सृष्टि का वर्णन हुआ है और प्राण आदि से युक्त सृष्टि बताई गई है। इस प्रकार के अन्न वर्णन भी है। इनसे ब्रह्म के संबंध में कोई भेद सिद्ध नहीं होता। सृष्टि का विभिन्न प्रकार वर्णन होने पर भी ब्रह्म एक ही है। मैं जीव रूप से विश्व में अनुप्रवेश द्वारा नाम रूप का प्रकाश करता हूँ, इसलिए जगत का कारण एकमात्र ब्रह्म ही है। तैतृय उपनिषद के प्रथम अनुवाक में ब्रह्म का लक्षण करते हुए उसे सत ज्ञान और अनंत कहकर आकाश आदि के कर्म क्रम पूर्वक ब्रह्म से इस पूर्ण जगत की उत्पत्ति कही है। फिर छठे अनुवाक में सो अकाम्यत कह कर साव पद से उसी ब्रह्म का आकर्षण किया है और अंत में कहा है कि वह जो कुछ है वह सत स्वरूप ब्रह्म है। उसके बाद असदा यद मगर आसीत अर्थात सृष्टि रचना के पहले जय जगत असत अर्थात जगत नाम रूप वाला ब्रह्म ही था। इससे सिद्ध हुआ कि सत शब्द प्रगट ब्रह्म के लिए और सत शब्द जगत का रूप प्रगट ब्रह्म के लिए कहा गया। छंदोग में भी आदित्यो ब्रह्म कहकर सत कहा है। इससे सिद्ध होता है कि सत और असत दोनों शब्द ब्रह्म बची है और वही इस विश्व का परम कारण है। कौशीतक ब्राह्मण ने राजा अजात शत्रु और बाला की नाम ब्राह्मण के संवाद का प्रसंग है। उसने बाला की के आदित्य आदि 16 पुरुषों को ब्रह्म बताया, परंतु राजा ने उसके मत का खंडन कर कहा कि बाला के तुम ब्रह्म को नहीं जानता। तुमने जिन 16 पुरुषों का वर्णन किया उनका जो कर्ता और जिसके जो कर्म है वही जानने जो है। इस प्रकार पुरुष रूप से कहे गए जीवात्मा और रहने का स्थान शरीर जैसा उस ब्रह्म के ही कर्म है, इसलिए कर्म जहाँ संपूर्ण जगत के लिए कहा गया है कारण तो वही एकमात्र ब्रह्म है। जीव और पुरुष प्राण के लक्षणों का स्पष्ट वर्णन होने से प्राण आदि का अधिष्ठाता जीव ही जगत का कर्ता और जानने योग है तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इस शंका का समाधान पहले ही कर चुके हैं कि पूर्ण धर्मों का आश्रय स्थान ब्रह्म है, इसलिए जीव और प्राण से उसके लक्षण की संगति नहीं हो सकती। आचार्य जैमिनी स्पर्ण जीव और मुख प्राण को जगत का कारण सिद्ध करने वाला नहीं बताते। वे इस वर्णन का दूसरा ही प्रयोग बताते हैं, जीव और मुख प्राण का ब्रह्म से लय होना कहकर जगत का कारण ब्रह्म को ही सिद्ध करना है, क्योंकि सुषुप्त अवस्था में सभी का ब्रह्म में विलीन होना और सृष्टि काल में फिर उसी ब्रह्म से प्रकट होना ब्रह्म को ही जगत का कारण सिद्ध करता है। उसी ब्रह्म से प्रकट होना कानव शाखा वालों ने बृहदारण्यक में इसे स्पष्ट कर दिया है कि वहां अजात शत्रु कहता है कि जय विज्ञान में पुरुष जीव जब सोता था तब बुद्धि सहसा प्राणों के साथ उस आकाश में जाकर सोया जो हृदय में है, उस समय इसे स्वप्रति कहते हैं जहां आकाश छल ब्रह्म बची है। बृहदारण्यक याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को आत्मा उपदेश देते हुए कहा कि सब के कार्य के लिए सब प्रिय नहीं होते, परंतु आत्मा के लिए सभी प्रिय होते हैं, इसलिए उसकी आत्मा का शरण मनन निध्यासन करें। यहाँ आत्म शाद ब्रह्म के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है अथवा जीवात्मा के अर्थ में। ये शंका का समाधान ये है कि पहले कहे हुए संगति और विश्लेषण से यहाँ सभी शब्दों का समन्वय ब्रह्म में होता है, जीव और मुख प्राण में नहीं। मुंडक उपनिषद जैसे प्रज्वलित अग्नि में अग्नि के समान स्वरूप वाली चिंगारियां निकलती हैं, वैसे ही अक्षर ब्रह्म से विभिन्न भाव उत्पन्न होकर उसमें विलीन हो जाते हैं। इससे जग का कारण ब्रह्म ही सिद्ध होता है। आत्मज्ञान से सर्वज्ञान की सिद्धि आत्म तत्व का परमात्मा तत्व में सिद्ध होने का ही लक्षण है। मैत्रेय जब मोक्ष का उपाय जानना चाहती हैं तब ब्रह्म तब क्या ऋषि ने उसे जीव का उपदेश किया होगा। जीव के उपदेश से मुक्ति नहीं मिल सकती, वह तो ब्रह्म ज्ञान से ही संभव है। इसलिए आशमरथ आचार्य भी ब्रह्म को ही जगत का कारण बताते हैं। ब्रह्म ज्ञानी पुरुष जब अपना देह त्याग कर परम धाम को जाता है और वहां परमात्मा स्वरूप हो जाता है, उस स्थिति में जीववाची शब्द से परमात्मा का ग्रहण होता है। ऐसा ओडुलोमी का मत है। मुंडक उपनिषद में देह त्याग कर ब्रह्म लोक को प्रस्थान करने वाले ब्रह्म ज्ञानी के संबंध में इस पर कहा है कि जब ब्रह्म ज्ञानी इसलिए छोड़ता है तब 15 कलाएं और सभी देवता अपने अपने रचता देवताओं से अवस्थित हो जाते हैं। फिर सब कर्म और विज्ञान में आत्मा सभी ब्रह्म के में एक होते हैं, जैसे बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप का त्याग कर समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही ब्रह्म ज्ञानी पुरुष अपने नाम रूप को छोड़कर उस परम पुरुष एवं दिव्य ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, ऐसे जीव का ब्रह्म में अनुष्ठान करना सिद्ध होता है। आचार्य काश कृतसन भी पहले काल में स्पूर्ण विश्व में ब्रह्म में अवस्थान करने की बात कहते हैं। इसे सिद्ध होता है कि ब्रह्म ही इस जगत का परम कारण है और अंत में यह सृष्टि जीव और प्राण सभी उस ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। छंदोग में श्वेत केतु का उपख्यान है कि उस में उसके पिता ने पूछा, उस क्या तुमने उस उपदेश को सुना है जिसके सुनने से अनसुना हुआ हो जाता है, ना सोचा हुआ हो जाता है, ना जाना जाना हुआ हो जाता है। तब श्वेत केतु उस उपदेश के संबंध में अपने पिता से प्रश्न किया, तब पिता ने कहा, जैसे मिट्टी के ठेले का तत्व जान लेने पर मिट्टी के सब वस्तुओं के मिट्टी होने का ज्ञान हो जाता है, ऐसे ही स्वर्ण के ज्ञान से स्वर्ण निर्मित कुंडल आदि का और लोहे के ज्ञान से लोहे की बनी हुई वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है, ऐसा दृष्टांत दिया है। यहाँ पिता का प्रश्न प्रतिज्ञा वाक है और मिट्टी आदि का उदाहरण दृष्टांत वाक है। यदि जड़ प्रकृति को उपादान कारण मान ले तो मिट्टी आदि के एक एक अंश के जानने से जड़ प्रकृति का ज्ञान होगा, वहां ब्रह्म का नहीं। इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्म को जगत का कारण मानना ही ठीक है। श्रुतियों में सृष्टि रचना के संकल्प का अनेक स्थलों पर वर्णन मिलता है। उसने इच्छा की कि मैं बहुत हो जाऊं, अथवा उसने संकल्प किया कि मैं बहुत हो जाऊं। इन उदाहरणों में स्पष्ट है कि जगत का उपादान मृत कारण ब्रह्म ही है। श्रुति ने स्वयं ही ब्रह्म को उपादान और निमित्त कारण कहा है। श्रुति स्वयं ही प्रश्न करती है कि उस नियंता ब्रह्म का क्या उपादान और क्या उपकरण जान जिससे उसने पृथ्वी और आकाश को आकाश की रचना की। हे विज्ञान, इसे मन में विचारो कि इन भुवनों का धारण पर कौन अधिष्ठाता बना। फिर श्रुति ने स्वयं ही उत्तर दिया है, ब्रह्म बनन ब्रह्म सा वृक्ष आसीद यतो द्यावा पृथ्वी निष्टक्षु मनीषिणो मनसा विबर्वीमी वो ब्रह्म व्यक्तिष्ठत भोगनामी निष्टक्षु। ब्रह्म ही उपादान कारण है और ब्रह्म ही निमित्त कारण है। वही ब्रह्म सब की अनुश्रुतियों भी मिलती हैं। उन सब का कहना यही है कि ब्रह्म ही जगत का उपादान निमित्त कारण है। तैतृय उपनिष्ठ उस पारब्रह्म ने स्वयं अपने को ही प्रकट किया। इस प्रकार कर्ता भी ब्रह्म और कर्म भी ब्रह्म, इस उपादान निमित्त दोनों कारण ब्रह्म ही है। श्रुति वाक है कि जो एक और वर्ण रहित होकर कि अपने स्पर्श और शक्ति के द्वारा बहुत वर्ण की सृष्टि उत्पन्न करता है, इससे दोनों रूपों का प्रतिपादन सिद्ध होता है। उस विश्व रचना के बाद वह ब्रह्म स्वयं उसमें प्रविष्ट हुआ और तब स्वयं ही सत प्रगट और त्यत अप्रगट हो गया। जड़ सत और असत इन सब के रूप में सत स्वरूप ब्रह्म ही हो गया। दिखाई पड़ने वाला और अनुपम में आने वाला वह सब सत ही है। इस प्रकार श्रुति वाक समूह पार्वण के ही द्वारा सर्वरूप होने का वर्णन करते हैं। योनि का निमित्त कारण है, व्यास जी ने शास्त्र योनि त्वात कहकर ब्रह्म को शास्त्र का उत्पत्ति करता बताया है। मुंडक उपनिषद में जो सब प्राणियों का उपादान कारण है उस पुरुष एवं ब्रह्म योनि को ज्ञानी जन परिपूर्ण देखते हैं, जहाँ ब्रह्म को ही कर्ता और योनि रूप से कहा है, जिसके अंशों से जिसमें कार्य हो वह उपादान और जो उपादान देह को कार्य रूप में बदले वह निमित्त निमित्त कहा जाता है। परंतु ब्रह्म ने स्वयं ही अपने देह को जगत के रूप में परिणत बदलना किया, इससे उपादान और निमित्त दोनों ही भ्रम सिद्ध। निमित्त दोनों ही भ्रम सिद्ध हुआ। उक्त प्रकार को ठीक प्रकार समझाकर कहा जा चुका। व्याख्याता शब्द को दो बार कहने से तात्पर्य कि अब अलग समझाने की आवश्यकता नहीं रही। श्रुति में कहा है कि न मनी विश्वानी न संति लोको यदा विरासीत पुरुषस्य सर्वम्, न मनी सर्वत्राणि यमा विशन्ति त्वं वै विष्णु परम उदाहरन्ति विश्व का नाम आदि यमा विश्व का नाम आदि कुछ नहीं था, वैसा उसी से प्रकट हुआ है। सभी नाम जिसमें समा जाते हैं वह परम परम विष्णु कहा जाता है। इस प्रकार सिद्ध हो चुका है कि संपूर्ण विश्व का निमित्त कारण ब्रह्म ही है, उसके सिवा अन्य नहीं है। चतुर्थ पाद स्पूर्ण प्रथम अध्याय स्पूर्ण है।